ब्लेंकर परिवार के लिए पार्टी, ब्लेंकर लोगों के लिए। श्री वेलेंट ने छुरी काटा मेज पर रख दिए और दोपहर के भोजन की मेज के पार पत्नी को अचरज और अविश्वास से देखा। पत्नी ने सुनहरे फ्रेम का चश्मा ठीक करते हुए नाटकीय स्वर में निमंत्रण जोर से पढ़ा। प्रोफेसर एमर्सन सिलर्टन और श्रीमती सिलर्टन वेलेंट दंपति को 25 अगस्त ठीक 3 बजे बुधवार अपराहन क्लब की बैठक में सादर आमंत्रित करते हैं। श्रीमती ब्लेंकर और ब्लेंकर बहनों से भेंट के लिए स्थान रेड गेबल्स कैथरीन स्ट्रीट उत्तर अपेक्षित है। हे भगवान, श्री वेलेंट ने ऐसे हांफते हुए कहा जैसे ये बेतुकी बात मानने के लिए निमंत्रण 2 बार पढ़ना जरूरी हो। बेचारी एमी सिलर्टन, उसका पति आगे क्या करेगा कोई नहीं जानता। श्रीमती वेलेंट ने आह भरी, लगता है अब उसने ब्लेंकर परिवार खोज निकाला है। प्रोफेसर एमर्सन सिलर्टन न्यूपोर्ट समाज के लिए ऐसा काटा था जिसे निकाला नहीं जा सकता था। उसकी जड़ें इतनी प्रतिष्ठित थीं कि अनदेखा करना भी असंभव था। लोग कहते थे वो हर सुविधा पाया हुआ आदमी है। उसके पिता सिलर्टन जैक्सन के चाचा थे, माँ बॉस्टन के पेनीलो घराने की थी। दोनों ओर धन और प्रतिष्ठा, जोड़ी एक दूसरे के योग्य। श्रीमती वेलेंड अक्सर कहती एमर्सन सिलर्टन को न पुरातत्ववेत्ता बनने की जरूरत थी, न किसी चीज का प्रोफेसर बनने की, न सर्दियां न्यूपोर्ट में बिताने की, न बाकी क्रांतिकारी हरकतों की। पर अगर परंपरा तोड़नी ही थी और समाज के रिवाज ठुकराने ही थे तो कम से कम बेचारी एमी डैगोनेट से शादी न करता, जिसे दूसरी तरह की जिंदगी की उम्मीद का हक था और जिसके पास अपनी बग्घी रखने लायक पैसा भी था। मिंगट खानदान में कोई नहीं समझ पाता था कि एमी सिलर्टन ऐसे सनकी पति की हरकतें चुपचाप क्यों सहती रही, जो घर को लंबे बालों वाले मर्दों और छोटे बालों वाली औरतों से भर देता था और यात्रा पर पत्नी को पेरिस या इटली के बजाय युकातान की कब्रें खोदने ले जाता था। पर सिलर्टन दंपति खुद को औरों से अलग जाने बिना अपनी जिद भरी जिंदगी जिए जा रहे थे। उनकी उबाऊ सालाना बाग पार्टी में सिलर्टन पेनिलो डैगोनेट रिश्ते के लिहाज से चट्टान किनारे के हर घराने को पर्ची डालकर एक अनिच्छुक प्रतिनिधि भेजना ही पड़ता था। गनीमत है कप रेस का दिन नहीं चुना, श्रीमती वेलेंड बोली। याद है 2 साल पहले जूलिया मिंगट के चाय नृत्य वाले दिन उन्होंने एक अश्वेत सज्जन के लिए पार्टी दी थी। शिक्र है इस बार कोई टकराव नहीं। हाँ, हम में से कुछ को तो जाना ही होगा, श्री वेलेंड ने चिंतित आह भरी। कुछ का क्या मतलब भाई, कई लोग। 3 बजे बड़ा बेढब वक्त है, 3:30 पर मुझे दवा लेनी होती है। बैनकॉम का नया इलाज बिना नियम के बेकार है और बाद में पहुंचूं तो बग्घी की सैर छूट जाएगी। इस ख्याल से उन्होंने फिर छुरी काटा रख दिए और बारीक झुरियों वाले गालों पर बेचैनी की परछाई उतर आई। आपको जाने की जरूरत ही नहीं जी, पत्नी ने उस प्रसन्नता से कहा जो अब यंत्रवत हो चली थी। मुझे वैसे भी बेलव्यू एवेन्यू के उस छोर पर कुछ कार्ड छोड़ने हैं। 3:30 के करीब झांक आऊंगी, इतना कि बेचारी एमी खुद को उपेक्षित न समझे। उन्होंने हिचकते हुए बेटी को देखा। और अगर न्यूलैंड दोपहर में व्यस्त हो तो मैं पिता को टट्टू गाड़ी में घुमा लाए और नई लगाम भी परख ले।
वेलेंट घराने का उसूल था कि दिन का हर घंटा पहले से तय हो। वक्त काटने की नौबत की आशंका खासकर ताश न खेलने वालों के लिए श्रीमती वेलेंड को वैसे ही सताती थी जैसे परोपकारी को बेरोजगारी की समस्या। दूसरा उसूल था कि माता पिता विवाहित बच्चों की योजनाओं में कम से कम दिखने में दखल न दें। और मी की स्वतंत्रता का मान रखते हुए श्री वेलेंड की मांगे साधना ऐसा पेचीदा उनर था कि श्रीमती वेलेंड का एक पल भी खाली न बचता। जरूर मैं पापा के साथ जाऊंगी, न्यूलैंड अपने लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही लेंगे, मी ने ऐसे कोमल स्वर में कहा जो पति को उसकी चुप्पी की याद दिला रहा था। दामाद की दिन योजना की लापरवाही पर श्रीमती वेलेंट की खीज बनी रहती थी। ससुराल के इस पखवाड़े में दोपहर कैसे बिताओगे पूछे जाने पर वो कई बार उलट बांसी में बोला, हूँ इस बार सोचता हूँ वक्त खर्च करने के बजाय बचा कर रख लूं। एक बार तो जब मी और उसकी माँ टलती आ रही मुलाकातों के लिए निकली, उसने कबूल किया कि पूरी दोपहर घर के नीचे समुद्र तट पर एक चट्टान की ओट में लेटा रहा। न्यूलैंड कभी आगे की नहीं सोचता, श्रीमती वेलेंड ने एक बार बेटी से दबे स्वर में कहा। मैं ने शांत भाव से कहा, हाँ पर देखिए फर्क नहीं पड़ता, कुछ करने को न हो तो वे किताब पढ़ लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल अपने पिता जैसा,
श्रीमती वेलंड ने ऐसे सहमति दी मानो कोई पुश्तैनी विचित्रता क्षमा कर रही हो। उसके बाद न्यूलैंड के खाली वक्त की बात अपने आप दब गई। फिर भी सिलर्टन निमंत्रण का दिन करीब आते ही मैं पति की दिनचर्या संवारने की चिंता दिखाने लगी। उसने चीवर्स के घर टेनिस मैच का प्रस्ताव रखा या जूलियस ब्यूफर्ट की नौका पर सैर का। उसे कुछ घंटे अकेला छोड़ने की भरपाई का उसका ढंग। 6 बजे तक लौट आऊंगी। जानते हो ना प्रिय, पापा उसके बाद कभी बग्घी से नहीं निकलते। पति ने जब कहा कि वो गाड़ी किराए पर लेकर द्वीप के उत्तर के अश्वशाला जाएगा उसके ब्रूम के लिए दूसरा घोड़ा देखने, तभी मैं को चैन आया। वो घोड़ा वे बहुत दिनों से खोज रहे थे, सो ये प्रस्ताव मैं को इतना भाया कि उसने माँ की ओर ऐसे देखा मानो आंखों से कह रही हो, देखिए मेरे पति भी हमारे जितनी ही अच्छी तरह वक्त की योजना बना लेते हैं। ये योजना उसी दिन आर्चर के मन में जड़ पकड़ चुकी थी जिस दिन सिलर्टन निमंत्रण का पहला जिक्र हुआ, पर उसने इसे छिपाए रखा। खुल गया तो पूरा न हो पाए। उसने पहले से गाड़ी और 2 बूढ़े किराए के घोड़े तय कर रखे थे जो समतल सड़क पर अब भी 18 मील दौड़ लेते थे। 2 बजे जल्दी जल्दी दोपहर का खाना निपटाकर वो फुर्ती से गाड़ी में कूदा और चल पड़ा। दिन बेदाग था। उत्तर की हवा गहरे नीले आकाश में छोटे सफेद बादल उड़ाए लिए जाती थी। नीचे समुद्र जगमगा रहा था। बेलव्यू एवेन्यू उस घड़ी सुनसान थी। आर्चर ने साइस को मिल स्ट्रीट के नुक्कड़ पर उतारा और पुरानी बीच रोड पकड़कर ईस्ट मैन तट पार किया। भीतर वही अकथ रोमांच था जो स्कूल की आधी छुट्टी पर होता था। इसी चाल से वो 3 से पहले पैराडाइज चट्टानों की अश्वशाला पहुंच जाएगा। घोड़ा देख जंचे तो आजमा, लेने पर भी 4 सुनहरे घंटे बचेंगे। सिलर्टन की पार्टी की खबर सुनते ही उसने मान लिया था कि मार्कीजा मैनसन जरूर ब्लेंकर परिवार के साथ न्यूपोर्ट आएगी
और उसी मौके पर ओलेंस का फिर नानी के साथ दिन बिताने जाएगी। किसी के न होने का लाभ उठाकर एलेन के ठिकाने को देख आना कोई बड़ी बात न थी और इससे उसकी धुंधली जिज्ञासा शांत हो सकती थी। आर्चर को यकीन नहीं था कि वो काउंटेस ओलेंस्का को फिर देखना चाहता है, पर खाड़ी के ऊपर की पगडंडी से उसे निहारने के बाद से वो तर्कहीन अवर्णनीय ढंग से उस जगह को देखना चाहता था जहाँ वो रहती थी। कल्पना की एलेन की हलचल का पीछा करना चाहता था जैसे मंडप में सचमुच की एलेन को देखा था। ये तड़प रात दिन उसका पीछा न छोड़ती थी। एक अनवरत अनाम प्यास, जैसे रोगी को अचानक किसी ऐसे खाने पीने की तलब उठे जो बरसों पहले चक्कर भुला दिया हो। आर्चर को होश ही न था कि वो ओलेंस्का से बात करना या उसकी आवाज सुनना चाहता है, इसलिए वो इस तड़प के पार देख सकता था न ये सोच पाता था कि ये ले कहां जाएगी। पर उसे लगता था जिस जमीन पर वो चलती थी उसे और उसके इर्द गिर्द के आकाश समुद्र को स्मृति में बसा ले तो बाकी दुनिया कुछ कम सोनी लगेगी। अश्वशाला में एक नजर में समझ गया घोड़ा मन का नहीं, फिर भी वक्त में कंजूसी न दिखे, सो कुछ देर सवारी की। पर 3 बजते ही उसने रास झटकी और पोर्ट्समथ की राह पकड़ ली। हवा थम गई थी। क्षितिज पर पतली धुंध बता रही थी कि ज्वार बदलते ही कोहरा साकोनेट नदी के साथ ऊपर चढ़ाएगा, पर आसपास के खेत और जंगल अभी सुनहरी धूप में डूबे थे। वो बगीचों में बसे स्लेटी फार्म हाउसों, घास के मैदानों, बलूत के जंगलों और उन गांवों से गुजरा जिनकी सफेद मीनारें आकाश में नुकीली उठी थी। रास्ता भटका, खेतों में काम करते लोगों से राह पूछी और तब कहीं सुनहरी गोल्डन रॉड और कांटेदार झाड़ियों से घिरी एक तंग पगडंडी पर मुड़ा। पगडंडी के छोर पर नदी नीली चमक रही थी। बाईं ओर बलूत और मेपल के जंगल के आगे एक पुराना जर्जर घर दिखा जिसकी तख्ता दीवारों की सफेदी उखड़ चुकी थी।
दरवाजे के सामने वैसा खुला छप्पर था जिसमें न्यू इंग्लैंड के लोग खेती के औजार रखते हैं और मेहमान अपने घोड़े बांधते हैं। आर्चर उतरा, जोड़ी छप्पर में बांधी और घर की ओर बढ़ा। सामने का लॉन उपेक्षित पड़ा घास के मैदान में बदल चुका था। बाई ओर डहलिया और जंग खाई गुलाब की झाड़ियों से भरा बेतरतीब बढ़ा बॉक्सवुड का बगीचा था। बगीचे के बीच कभी सफेद रही जालीदार बनावट का प्रेत सा ग्रीष्म मंडप खड़ा था जिसके ऊपर लकड़ी का क्यूपिड धनुष बाढ़ खोकर भी अब तक व्यर्थ निशाना साधे था। आर्चर कुछ देर फाटक से टिका रहा। आसपास कोई नहीं दिखता था। खुली खिड़कियों से कोई आवाज नहीं आती थी। दरवाजे के आगे एक बूढ़ा स्लेटी न्यूफाउंडलैंड कुत्ता ऊंघ रहा था। बाणहीन क्यूपिड जैसा ही निकम्मा पहरेदार। ये शांत ढहता ठिकाना शोरगुल वाले ब्लेंकर परिवार का घर है। ये बात उसे अजीब लगी, पर उसे यकीन था कि वो गलत नहीं है। बड़ी देर वो वहीं खड़ा दृश्य निहारता रहा, धीरे धीरे उसके उनींदे जादू में डूबता गया। फिर बीतते वक्त के एहसास से चौंका, बस इतना देख लिया, अब लौट चलूं? वो हिचकिचाया। अचानक घर का भीतर देखने की इच्छा जागी, मानो उस कमरे की कल्पना करना चाहता हो जहां ओलेंस्का बैठती होगी। दरवाजे तक जाकर घंटी बजाने से उसे कौन रोकता था, और अगर वो जैसा अनुमान था सबके साथ बाहर गई होती तो अपना नाम बताकर बैठक में जा सकता था और संदेश छोड़ सकता था। पर घर की ओर जाने के बजाय वो लॉन पार कर बगीचे की तरफ चला। बॉक्सवुड के बगीचे में घुसते ही ग्रीष्म मंडप में कोई चटख रंग दिखा। अगले ही पल पहचान गया कि वो गुलाबी छतरी है। छतरी ने उसे चुंबक सा खींच लिया। उसे पक्का यकीन था ये उसकी है। आर्चर मंडप में गया, डगमग बेंच पर बैठा, रेशमी छतरी उठाई और मूठ को गौर से देखा। मूठ किसी दुर्लभ सुगंधित लकड़ी की बनी थी। आर्चर ने उसे होंठों से लगा लिया। उसी क्षण झाड़ियों से रगड़ खाती स्कर्ट की सरसराहट सुनाई दी। वो छतरी दोनों हाथों में थामे निश्चल बैठा रहा, आंखें उठाए बिना सरसराहट को पास आने दिया।
और वो तो हमेशा से जानता था कि ऐसा क्षण कभी भी आ सकता है। अरे मिस्टर आर्चर, किसी युवती की ऊंची आवाज ने उसे पुकारा। आर्चर ने नजर उठाई, सामने ब्लेंकर बहनों में सबसे छोटी और सबसे भारी भरकम लड़की खड़ी थी। बिखरे सुनहरे बाल, पुरानी मलमल की पोशाक, एक गाल पर तकिए के निशान सा लाल दाग था और अजगी आंखें उसे उलझन से पर अपने पन से देख रही थी। हे भगवान, आप कहां से प्रकट हुए? मैं झूले में गहरी नींद सो गई होंगी। सब लोग न्यूपोर्ट गए हैं, घंटी बजाई आपने? वो अब भी नींद में लिपटी बोले जा रही थी। आर्चर उससे भी ज्यादा घबराया हुआ था। मैं नहीं, यानी बजाने ही वाला था, द्वीप पर एक घोड़ा देखने आया था। सोचा शायद श्रीमती ब्लेंकर और मेहमान मिल जाए, पर घर खाली लगा तो बैठकर इंतजार करने लगा। मिस ब्लेंकर नींद झटक कर बढ़ती दिलचस्पी से देखने लगी। घर सचमुच खाली है, माँ नहीं है, मार्कीजा नहीं, कोई नहीं। उसने हल्की उलाहना भरी सूरत बनाई। पता नहीं था आपको, प्रोफेसर सिलर्टन आज दोपहर माँ और हम सब के लिए बाग पार्टी दे रहे हैं। मैं नहीं जा सकी, गला खराब है। माँ को शाम की वापसी का डर था, कितनी निराशा की बात है ना। पर हाँ, उसने चहकते हुए जोड़ा, अगर पता होता कि आप आएंगे तो मुझे इतना अफसोस न होता। उसकी भोंडी नखरेबाजी के लक्षण उभरने लगे
तो आर्चर ने झट बात काटी, पर मादम ओलेंस्का, वे भी न्यूपोर्ट गई हैं? मिस ब्लेंकर ने चौंक कर देखा। मादम ओलेंस्का, आपको नहीं मालूम, उन्हें बुलावा आ गया, वे चली गई। चली गई? तभी उसकी नजर छतरी पर पड़ी। अरे मेरी प्यारी छतरी तो यहाँ है, अपनी सहेली केटी को दी थी, उसके रिबनों से मेल खाती थी, वो लापरवाह यही गिराकर चलती बनी। हम ब्लेंकर लोग ऐसे ही हैं, सच्चे बोहिमियन। मजबूत हाथ से छतरी खोलकर उसने गुलाबी गुंबद सिर पर तान लिया। हाँ, एलन कल चली गई, हमें उन्हें एलन कहने की इजाजत है, जानते हैं? बोस्टन से तार आया था, बोली शायद दो दिन लगे। उनके बाल बांधने का ढंग कितना प्यारा है ना? वो चहचहाती रही। आर्चर उसके आर पार देखता रहा, मानो वो पारदर्शी हो। नजर में बस वो तुच्छ छतरी थी जो उसके हंसते सिर पर मेहराब सी तनी थी। थोड़ी देर बाद उसने संभल कर पूछा, आपको मालूम है मादम ओलेंस्का बोस्टन क्यों गई? कोई बुरी खबर तो नहीं? मिस ब्लेंकर ने इसे हंसते हुए नामुमकिन सा माना। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, तार में क्या था, उन्होंने हमें नहीं बताया। शायद मार्कीजा को भनक न लगने देना चाहती थी। कैसा रूमानी अंदाज है उनका, है ना? जब श्रीमती स्कॉट सिडन्स लेडी जेराल्डीन की प्रणय गाथा पढ़ती है बिल्कुल वैसी नहीं लगती।
कभी सुना नहीं आपने? आर्चर के दिमाग में विचारों का रेला उमड़ रहा था। पूरा भविष्य जैसे अचानक आंखों के आगे खुल गया और उस अनंत सूनेपन के आर पार उसे एक आदमी की छोटी होती मिटती आकृति दिखी, जिसके साथ कभी कुछ नहीं घटेगा। उसने चारों ओर देखा, बिन समरा बगीचा, ढहता घर, बलूत का जंगल जिसके नीचे सांझ उतर रही थी। यही वो जगह थी जहां ओलेंस्का को होना चाहिए था, पर वो दूर थी और ये गुलाबी छतरी तक उसकी नहीं थी। आर्चर ने माथा सिकोड़ा, हिचकिचाया। क्या आप जानती हैं मैं कल बोस्टन जा रहा हूँ, अगर उनसे मिल सकूं। उसने भाप लिया कि मिस ब्लेंकर की दिलचस्पी घट रही है, हालांकि मुस्कान वैसी ही थी। अरे वाह, जरूर, कितना अच्छा सोचा आपने। वे पार्कर हाउस में ठहरी है, इस मौसम में वहां रहना तो भयानक होगा।
उसके बाद की बातचीत आर्चर को टुकड़ों में ही याद रही। लड़की ने आग्रह किया कि परिवार के लौटने तक रुके और साथ खाना खाकर जाए, पर उसने मिस ब्लेंकर की मिन्नतों का डटकर प्रतिरोध किया। आखिरकार उसे बगल में लिए वो लकड़ी के क्यूपिड की नजरों से बाहर निकला, घोड़े खोले और गाड़ी पर चढ़ा। गली का मोड़ मुड़ते हुए उसने देखा, मिस ब्लेंकर फाटक पर खड़ी गुलाबी छतरी हिला रही थी।